रोम दृष्टि स्थापित करता है। संख्या 13,
रोम के विवाद, पशु की प्रतिमा से जुड़ी अंतिम परीक्षा को समझना।
वर्तमान मुद्दे की अपनी समझ का निष्कर्ष निकालने के लिए जब हम एडवेंट इतिहास में हुई विभिन्न विवादों पर रेखा रखते हुए विचारों को एक साथ लाते हैं, तो हमने 5 भविष्य सूचक रेखाओं की चुनी हुई विशेषताएं ली हैं। पहली रेखा ही अंतिम रेखा भी है, क्योंकि दोनों विवाद सीधे दानियल 11 के पद 14 के 13 लोगों के लुटेरे पर आधारित थे। हमने उराया स्मिथ और जेम्स वाइट के विवादों तथा दानियल की पुस्तक में नित्य के विवाद पर विचार किया। हमने 1958 में दानियल 11 के अंतिम 6 पदों की मुहर खुलने के बाद उत्तर का राजा के संबंध में उत्पन्न हुए विवाद पर भी विचार किया। फिर हमने योएल की पुस्तक के 4 कीटों पर विचार किया। इन प्रत्येक रेखाओं में और भी बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है, पर हम केवल उन कुछ विशेषताओं को अलग कर रहे हैं जिन्होंने रोम के विषय से संबंधित सत्यों को अस्वीकार करने वाले दृष्टिकोणों के निर्माण में योगदान दिया।
5 इतिहास हैं, पर पहला ही अंतिम भी होने के कारण कुल 6 रेखाएं बनती हैं। इन विवादास्पद रेखाओं का भविष्य सूचक संदर्भ अंतिम दिनों का है, इसलिए इन रेखाओं को पशु की प्रतिमा की परीक्षा के दौरान लागू किया जाना है।
प्रभु ने मुझे स्पष्ट रूप से दिखाया है कि अनुग्रह का समय समाप्त होने से पहले पशु की प्रतिमा गठित की जाएगी, क्योंकि ये परमेश्वर के लोगों के लिए वो महान परीक्षा होगी जिसके द्वारा उनका शाश्वत भाग्य निर्धारित किया जाएगा। यह वो परीक्षा है जिससे परमेश्वर की प्रजा को उन पर मुहर लगने से पहले अवश्य गुजरना है। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस, खंड 15:15।
पशु की प्रतिमा के निर्माण की परीक्षा भी अन्य 6 विवादों की तरह रोम से संबंधित भविष्यवाणी संबंधी विषय पर एक परीक्षा है। परमेश्वर की प्रजा पर मुहर लगाए जाने से पहले जो बड़ी परीक्षा आती है वो रोमी पशु की प्रतिमा के निर्माण के बारे में है। वो पशु पोप की सत्ता है और संयुक्त राज्य अमेरिका शीघ्र आने वाले रविवार के कानून की ओर बढ़ते हुए पोप की सत्ता की एक प्रतिमा बनाता है।
ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका पशु की प्रतिमा बना सके, धार्मिक शक्ति को नागरिक सरकार को इस प्रकार नियंत्रित करना होगा कि राज्य की सत्ता का उपयोग कलीसिया द्वारा भी अपने स्वयं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाए। महान विवाद 475।
संयुक्त राज्य अमेरिका में वो रविवार का कानून ये दर्शाता है कि पशु की प्रतिमा संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरी तरह बन चुकी है,
परंतु धर्मनिरपेक्ष सत्ता द्वारा किसी धार्मिक कर्तव्य को लागू करने के उसी कार्य में कलीसियाएं स्वयं पशु की प्रतिमा बन जाएंगी। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार का पालन लागू करना पशु और उसकी प्रतिमा की उपासना को लागू करना होगा। महान विवाद 429।
रविवार के कानून के समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका में पशु की छवि पूरी तरह बन चुकी होती है, और तब संयुक्त राज्य अमेरिका परमेश्वर से पूरी तरह विच्छिन्न हो जाता है तथा वो समूचे विश्व को पशु की छवि बनाने के लिए बाध्य करने का अपना भविष्यवाणी का कार्य आरंभ करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून के समय शैतान विश्व के राष्ट्रों का नेतृत्व करते हुए पशु की छवि बनाने की प्रक्रिया को दोहराने के अपने अद्भुत कार्य की शुरुआत करता है जो समस्त विश्व के राष्ट्रों को समेटती है।
परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए पापसी सत्ता को लागू करने वाले फरमान द्वारा हमारा राष्ट्र पूर्णतः धार्मिकता से विमुख हो जाएगा। जब प्रोटेस्टेंटवाद खाई के पार अपना हाथ बढ़ाकर रोमी शक्ति का हाथ थामेगा, जब वो अथाह गर्त के ऊपर से हाथ बढ़ाकर आत्मवाद से हाथ मिला लेगा, और जब इस त्रिविध गठबंधन के प्रभाव में हमारा देश प्रोटेस्टेंट और गणतंत्री शासन के रूप में अपने संविधान के प्रत्येक सिद्धांत का परित्याग कर देगा तथा पापसी असत्य और भ्रम के प्रचार प्रसार की व्यवस्था करेगा, तब हम जान सकते हैं कि शैतान के अद्भुत कार्य का समय आ गया है और कि अंत निकट है। टेस्टिमोनीज, खंड 5, जोएल 5c।
संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय शैतान संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर हर राष्ट्र को कलीसिया राज्य प्रणाली स्थापित करने और रविवार की उपासना लागू करने में संयुक्त राज्य अमेरिका के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए बाध्य करेगा।
शैतान पृथ्वी पर रहने वालों को धोखा देने के लिए चमत्कार करेगा। आत्मवाद मृतकों का रूप धरवाकर अपना काम करेगा। जो धार्मिक संस्थाएं परमेश्वर की चेतावनी के संदेशों को सुनने से इनकार करेंगी, वे गहरे धोखे में आ जाएंगी और संतों को सताने के लिए राजकीय सत्ता के साथ मिल जाएंगी। प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले लोगों को सताने में पापाई सत्ता के साथ एक हो जाएंगी। यही वो शक्ति है जो उत्पीड़न की उस महान व्यवस्था का गठन करती है जो मनुष्यों की अंतरात्मा पर आध्यात्मिक अत्याचार करेगी।
उसके दो सींग मेमने के समान थे और वो अजगर के समान बोलता था। यद्यपि वे परमेश्वर के मेमने के अनुयायी होने का अंगीकार करते हैं, फिर भी लोग अजगर की आत्मा से भर जाते हैं। वे अपने को दीन और नम्र बताते हैं, पर वे शैतान की आत्मा से बोलते और विधान करते हैं और अपने आचरण से प्रकट करते हैं कि वे जो होने का दावा करते हैं उसके ठीक विपरीत हैं। ये मेमने सदृश शक्ति उन लोगों पर युद्ध करने में अजगर के साथ मिल जाती है जो परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं और यीशु मसीह की गवाही रखते हैं। और शैतान इस संसार के देवता के रूप में प्रोटेस्टेंटों और पोपवादियों के साथ मिलकर उनके साथ एकतान होकर कार्य करता है। मनुष्यों पर ऐसे हुक्म चलाता है मानो वे उसके राज्य की प्रजा हों, जिन्हें वो अपनी इच्छा के अनुसार बरत सके, शासित कर सके और नियंत्रित कर सके।
यदि मनुष्य परम ईश्वर की आज्ञाओं को पैरों तले रौंदने पर सहमत नहीं होंगे तो अजगर की आत्मा प्रकट हो जाती है, उन्हें कैद किया जाता है, परिषदों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उन पर जुर्माना लगाया जाता है। वह छोटे और बड़े, धनी और निर्धन, स्वतंत्र और दास, सबके दाहिने हाथ पर या उनके माथे पर एक चिन्ह लगवा देता है। प्रकाशित वाक्य 13:16। उसके पास पशु की मूर्ति में प्राण फूंकने की शक्ति थी, ताकि पशु की मूर्ति बोले भी और जितने लोग पशु की मूर्ति की उपासना न करें उन्हें मरवा दे। पद 15। इस प्रकार शैतान यहोवा के विशेषाधिकारों को हड़प लेता है। पाप का मनुष्य परमेश्वर के आसन पर बैठता है, अपने आप को परमेश्वर घोषित करता है और परमेश्वर से ऊपर होकर आचरण करता है। माइनोस्क्रिप्ट रिलीजेस खंड 16:16।
पापाई सत्ता पशु है, संयुक्त राष्ट्र अजगर है और संयुक्त राज्य अमेरिका झूठा नबी है। जो लोग मसीह विरोधी के अर्थ को लेकर भ्रमित हो जाते हैं, जो कि शैतान भी है और शैतान का सांसारिक प्रतिनिधि रोम का पोप भी है, वे अंततः मसीह विरोधी के पक्ष में जा खड़े होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका पाप का मनुष्य नहीं है, पाप का मनुष्य मसीह न होती है और वो शैतान का सांसारिक प्रतिनिधि है। जो शक्ति पापाई सत्ता को पृथ्वी के सिंहासन पर बैठाती है उसे स्वयं पापाई सत्ता के साथ गडमड करना पौलुस के अनुसार सत्य से प्रेम न करने का प्रमाण है। मूर्ति पूजक रोम के उस भविष्य सूचक संबंध को ठुकराना कि उसने पापाई सत्ता को रोके रखा और पापाई सत्ता के प्रकट होने के लिए मूर्ति पूजक रोम का हटना आवश्यक था, जैसा कि 2 थिसलुनिकियों अध्याय 2 में बताया गया है। दरअसल पवित्र आत्मा के उंडेले जाने को अस्वीकार करना और अपवित्र आत्मा के उंडेले जाने को स्वीकार करना है, जिसे पौलुस प्रबल भ्रम कहता है। इसके साथ ही प्रत्येक प्राचीन भविष्यद्वक्ता ने जिन दिनों में वे रहते थे उनकी अपेक्षा अंतिम दिनों के विषय में अधिक सीधे तौर पर कहा।
प्राचीन भविष्यद्वक्ताओं में से हर एक ने अपने समय के लिए कम और हमारे लिए अधिक कहा, इसलिए उनकी भविष्यवाणियां हमारे लिए लागू है। अब ये सब बातें उन पर आदर्श ठहरने के लिए हुई और वे हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं जिन पर संसार के अंत आ पहुँचे हैं। 1 कुरिन्थियों 10:11। उन्होंने अपने लिए नहीं पर हमारे लिए उन बातों की सेवा की जो अब तुम्हें उन लोगों के द्वारा बताई गई हैं जिन्होंने स्वर्ग से भेजे हुए पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें सुसमाचार सुनाया है, जिन बातों में स्वर्गदूत भी झांक कर देखना चाहते हैं। 1 पतरस 1:12। बाइबल ये इस अंतिम पीढ़ी के लिए अपने खजानों को संचित करके उन्हें एक साथ बांध दिया है। पुराने नियम के इतिहास की सभी महान घटनाएं और गंभीर कार्यवाहियों पहले भी और अब भी इन अंतिम दिनों में कलीसिया में अपने आप को दोहरा रही हैं। चयनित संदेश पुस्तक 3:3-3।
मूर्ति पूजक रोम और द्वितीय थिसलुनीकियों में वर्णित पाप का मनुष्य अंतिम दिनों के संयुक्त राज्य अमेरिका और पापाई रोम का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सत्य को गलत समझना अन्य बातों के साथ
ये दिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी व्याख्या को प्रकार और प्रतिरूप के सिद्धांत पर आधारित होने का दावा भी करे, तो भी वो वास्तव में प्रकार और प्रतिरूप को समझता नहीं है। पवित्र इतिहास में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिरूप कई शक्तियों में प्रस्तुत किया गया है। दो सींगों वाली हर शक्ति अंतिम दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करती है, चाहे वो इसराइल के उत्तरी और दक्षिणी राज्य हों, मादी फारसी साम्राज्य हो, या सदोम और मिस्र द्वारा निरूपित नास्तिक फ्रांस। वो काल जब संयुक्त राज्य अमेरिका पशु की और पशु के लिए एक प्रतिमा बनाता है। दानियेल अध्याय 2 के लोहे और मिट्टी द्वारा, दानियेल अध्याय 8 में पुरुष और स्त्री के रूप में प्रकट होने वाले छोटे सींग द्वारा, तथा कर्मेल पर्वत पर एलिया की गवाही में बाल के भविष्यद्वक्ताओं और उपवन के याजकों द्वारा प्रतिरूपित किया गया है। हेरोद की नशे में धुत जन्मदिन की दावत की गवाही में सलोमी संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिरूप है। परगामस संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिरूप है और उस समझौते की पहचान कराता है जो थुआतीरा तक ले जाता है, जो अंतिम दिनों की पोप की सत्ता का प्रतिरूप है।
496 में फ्रैंक्स के राजा क्लोविस रेनाल्ड रीगन के युग में संयुक्त राज्य का प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। 533 में जस्टिनियन रविवार के कानून से पूर्व के समय में डोनाल्ड ट्रंप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक प्रतिरूपण में संयुक्त राज्य उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो अंतिम दिनों में पोप की सत्ता के लिए आगे समर्पण में झुकती है। जो शक्ति समर्पण में झुकती है, उसे रोम को श्रद्धा अर्पित करने के रूप में दर्शाया गया है। निष्ठा समर्पण की क्रिया में राजा जो मुख्य है को झुककर प्रणाम करना शामिल है।
यह दिखाया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका वो शक्ति है जिसका प्रतिनिधित्व मेमने जैसे सींगों वाला पशु करता है, और ये कि ये भविष्यवाणी तब पूरी होगी जब संयुक्त राज्य अमेरिका रविवार पालन को लागू करेगा, जिसे रोम अपनी सर्वोच्चता की विशेष मान्यता के रूप में दावा करता है। परंतु पापाई सत्ता के प्रति इस सम्मान में संयुक्त राज्य अमेरिका अकेला नहीं होगा। जिन देशों ने कभी उसके प्रभुत्व को स्वीकार किया था, उनमें रोम का प्रभाव अभी भी नष्ट होने से बहुत दूर है, और भविष्यवाणी बताती है कि उसकी शक्ति फिर से बहाल होगी। मैंने देखा कि उसके सिरों में से एक मानो घातक रूप से घायल हुआ, और उसका घातक घाव चंगा हो गया, और सारी दुनिया आश्चर्य करती हुई उस पशु के पीछे पीछे होली। पत 3। घातक घाव का लगना 1798 में पापाई सत्ता के पतन की ओर संकेत करता है।
इसके बाद भविष्यद्वक्ता कहते हैं, उसकी घातक चोट अच्छी हो गई और सारी पृथ्वी उस पशु के पीछे पीछे चकित होती हुई चली। पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है कि पाप का मनुष्य दूसरे आगमन तक बना रहेगा। 2 थिस्सलुनीकियों 2:3-8। समय के बिल्कुल अंत तक वो धोखे के कार्य को आगे बढ़ाता रहेगा, और प्रकाशित वक्ता घोषित करता है पापसी का भी संदर्भ देते हुए, जितने पृथ्वी पर बसे हैं वे सब उसकी आराधना करेंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं हैं। प्रकाशित वाक्य 13:8। पुरानी और नई दोनों दुनिया में रविवार की संस्था को दिए जाने वाले सम्मान के माध्यम से, जो केवल रोमी कलीसिया के अधिकार पर आधारित है, पापसी को श्रद्धा अर्पित की जाएगी। महान संघर्ष 700।
अंतिम वाक्य ये अतिरिक्त प्रमाण देता है कि सिस्टर वाइट ने पुरानी दुनिया को यूरोप और नई दुनिया को अमेरिकी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करने वाला समझा था। ऐसा होने के कारण वही संयुक्त राज्य है जो पापाई सत्ता को आदर अर्पित करता है और बाकी दुनिया को भी वैसा ही करने के लिए मजबूर करता है। ये संयुक्त राज्य को पापाई सत्ता के निर्देशों के अधीन होने के रूप में चिन्हित करता है। स्थापित होने के लिए मस्तक को समझने पर यशाया की पहचान और उसका दिया गया जोर, अपना दिव्य उद्देश्य इस तथ्य में पाते हैं कि मस्तक का प्रतीक भविष्यवाणी की बाहरी रेखा तथा आंतरिक रेखा दोनों को समझने की कुंजी बन जाता है।
क्योंकि सीरिया का सिर दमिश्क है और दमिश्क का सिर रिजीन है, और 65 वर्षों के भीतर इफ्राम ऐसा टूट जाएगा कि वो फिर कोई जाति न रहेगा, और इफ्राम का सिर सामरिया है, और सामरिया का सिर रिमलिया का पुत्र है। यदि तुम विश्वास न करोगे तो निश्चय ही स्थिर न रहोगे। यशाया 7:8-9।
अंतिम दिनों में जब हर नबी की गवाही प्रभावी होती है, तेरे लोगों के लुटेरे दर्शन को स्थापित करते हैं, भविष्यवाणी की आत्मा के अधिकार पर और एडवेंटिज्म के बुनियादी सत्यों के अनुरूप, जैसा कि हबक्कूक के दो पवित्र चार्टों पर दर्शाया गया है, लुटेरे रोम का प्रतीक है। जब मूर्ति पूजक रोम ने पहली बार ईसा पूर्व 200 में इतिहास में प्रवेश किया, तब उसने अंतिम दिनों के आधुनिक रोम का पूर्व रूप दिखाया। यही भविष्य सूचक सत्य अंतिम दिनों की भविष्यवाणी के दर्शन को स्थापित करता है। और यदि आप ये देखने से इनकार करते हैं कि आधुनिक रोम का सिर पापाई सत्ता है, तो निश्चय ही आप स्थापित नहीं होंगे।
संसार तूफान, युद्ध और कलह से भरा हुआ है, फिर भी एक ही मुखिया पोप सत्ता के अधीन लोग उसके साक्षियों के माध्यम से परमेश्वर का विरोध करने के लिए एकजुट हो जाएंगे। टेस्टिमोनीज खंड 7 51।
यदि सुनने के कान हो तो तुम समझ सकते हो कि मसीह के युग के यहूदियों की एक प्रमुख चूक ये थी कि उन्होंने छाया को वास्तविक वस्तु मान लिया। क्रूस से पहले और बाद के यहूदी अपनी उपासना प्रणाली के प्रतीक रूपों पर भरोसा करते रहे और प्रतिरूप को अस्वीकार कर दिया। वे कहते रहे कि छाया ही वास्तविक वस्तु है, और ऐसा करते हुए उन्होंने प्रेरणा प्राप्त शास्त्र में ऐसे लोगों का चित्र छोड़ दिया जो अंतिम दिनों में भी छाया को ही वस्तु मानेंगे।
जब संयुक्त राज्य अमेरिका पशु की प्रतिमा बनाता है, तब वो पशु की छाया बना रहा होता है। वो वास्तविकता की छाया बना रहा है, क्योंकि प्रतिमा प्रतीकात्मक निरूपण है। संयुक्त राज्य अमेरिका को जब वो पशु की प्रतिमा बनाता है, आधुनिक रोम के प्रतीक के रूप में पहचानना प्राचीन इसराइल द्वारा महान प्रतिरूप के अस्वीकार और क्रूस पर चढ़ाए जाने के समानांतर है।
जो लोग ये त्रुटिपूर्ण मत सिखाते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका तेरे लोगों के लुटेरे हैं, वे अपने नेत्ररूप और प्रतिरूप के उपयोग के बारे में बहुत बातें करते हैं, और वे अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान पशु की प्रतिमा के रूप में करते हैं, तथा किसी तरह ये समझ लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका को पशु की प्रतिमा ठहराने से ये सिद्ध हो जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तेरे लोगों के लुटेरे हैं। यदि वे सचमुच रूप और प्रतिरूप के मूल सिद्धांतों से अपने आप को संचालित होने दें, तो वे शीघ्र देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में रूप और प्रतिरूप द्वारा बार बार चित्रित संयुक्त राज्य अमेरिका की भविष्य सूचक भूमिका संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान उस शक्ति के रूप में करती है जो पोपाई अधिकार के अधीन है। वे यह भी समझेंगे कि यदि पशु को संदर्भ के रूप में सामने न रखा जाए, तो उस पशु की प्रतिमा की पहचान करना बेतुका है, क्योंकि बिना पशु के प्रतिमा का होना ही नहीं हो सकता। पशु की प्रतिमा को परिभाषित करने वाली एकमात्र चीज स्वयं पशु ही है, क्योंकि दर्पणवत दर्शन में प्रतिमा की स्थापना करने वाली शक्ति पोपाई ही है।
संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पशु की प्रतिमा बनाने के समानांतर भविष्यवाणी की रेखा वो है जब सच्चे प्रोटेस्टेंटवाद का सींग मसीह की प्रतिमा बनाता है। उस गठन की विशेष पहचान दानियल के 10वें अध्याय में होती है, जब दानियल मारा दर्शन देखता है जो दर्पण का दर्शन है। दानियल उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो मसीह को निहारते हैं, और ऐसा करते हुए वे मसीह के चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं। यदि मसीह का दर्शन दानियल को प्रस्तुत न किया गया होता, तो वो मसीह के चरित्र को प्रतिबिंबित करने में असमर्थ होता। अपने भीतर मसीह की प्रतिमा रचने के लिए 144,000, जिनका प्रतिनिधित्व दानियल द्वारा 10वें अध्याय में किया गया है, को उसके चरित्र का दर्शन करना होगा। निहारने से वे बदल जाते हैं,
परंतु हम सब उघरे हुए मुख से जैसे दर्पण में प्रभु की महिमा को निहारते हैं, उसी स्वरूप में एक महिमा से दूसरी महिमा में रूपांतरित होते जाते हैं, और ये सब प्रभु की आत्मा से होता है। 2 कुरिन्थियों 3:18।
अध्याय 10 में दानियल द्वारा देखे गए मराह दर्शन की इब्रानी परिभाषा ये है, एक दर्शन, साथ ही कारणवाचक रूप में एक दर्पण, आईना, दर्शन। पूर्ववर्ती पद में दर्पण के रूप में अनुदित यूनानी शब्द का अर्थ है अपने आप को दर्पण में देखना, अर्थात अपने प्रतिबिंब को देखना, रूपक रूप में, दर्पण में देखने के समान निहारना।
जेम्स भी दर्पण से संबंधित सत्य की एक बात प्रस्तुत करता है,
क्योंकि यदि कोई वचन का श्रोता हो और करने वाला न हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो दर्पण में अपना स्वाभाविक मुख देखता है, क्योंकि वो अपने आप को देखता है और अपनी राह चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा मनुष्य था। पर जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान से देखता है और उसमें बना रहता है, वह भूलने वाला श्रोता नहीं पर कार्य का कर्ता है। वह मनुष्य अपने कर्म में धन्य होगा। याकूब 2:23-25।
यदि हम सत्य से प्रेम करते हैं और इस कारण वचन के पालन करता है, तो जिस दर्पण को हम देखते हैं वो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था है। फिर यदि हम सत्य से प्रेम नहीं करते और उसके बाद अपने ही राह चल पड़ते हैं, जैसा दानियल के साथ वालों ने भागते हुए समय किया, तो दर्पण मात्र हमारा ही प्रतिबिंब होता है।
परमेश्वर की व्यवस्था वो दर्पण है जो मनुष्य को जैसा वो है वैसा ही पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित करती है और उसके सामने उसकी सही छवि रखती है। कुछ लोग मुंह मोड़कर इस चित्र को भूल जाएंगे, जबकि अन्य व्यवस्था के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, मानो इससे उनके चरित्र की कमियां दूर हो जाएंगी। फिर भी कुछ ऐसे होंगे जो व्यवस्था द्वारा दोषी ठहराए जाने पर अपने अपराधों के लिए पश्चाताप करेंगे और मसीह के गुणों पर विश्वास के द्वारा मसीही चरित्र को परिपूर्ण करेंगे। विश्वास और कर्म 31।
दानियल ने दर्पण सदृश दर्शन में स्वयं को नहीं देखा, उसने मसीह को देखा जो याकूब की स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था का सिद्ध प्रतिरूप है।
पृथ्वी पर मसीह का जीवन ईश्वरीय व्यवस्था का पूर्ण प्रतिबिंब है। उसी में जीवन, आशा और ज्योति है। उन्हें निहारो और तुम उसी स्वरूप में एक चरित्र से दूसरे चरित्र तक रूपांतरित हो जाओगे। साइंस ऑफ द टाइम्स 10 मई 1810।
पशु की प्रतिमा पशु का ही प्रतिबिंब है और पशु की प्रतिमा का निर्माण परमेश्वर के लोगों के लिए वो महान परीक्षा है जिसके द्वारा उनकी अनंत नियति तय होगी। जब प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार पर नियंत्रण अपने हाथ में लेंगी, तब वे कलीसिया राज्य व्यवस्था का वही प्रतिरूप बना चुकी होंगी जिसे पापाई सत्ता सदा से अपनाती आई है। उसी समयावधि में मसीह का स्वरूप उसके अंतकालीन लोगों में ढाला जाएगा। तो भी जो दानियल के साथ थे उन्होंने दर्शन नहीं देखा, क्योंकि वे उस दर्शन से भाग गए थे। मसीह की छवि का निर्माण उपासकों के दो वर्गों को प्रकट करता है। एक वर्ग परावर्तन के सिद्धांत को अस्वीकार करता है। परावर्तन के सिद्धांत का प्रतीक दर्पण है, क्योंकि मसीही आध्यात्मिक स्वर्गीय सत्यों को दर्शाने के लिए शाब्दिक सांसारिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं।
मसीह के दृष्टांत में वही सिद्धांत दिखाई देता है जो संसार के लिए उनके स्वयं के मिशन में था, ताकि हम उनके दिव्य चरित्र और जीवन से परिचित हो सकें। मसीह ने हमारी प्रकृति को अपनाया और हमारे बीच निवास किया। दैवत्व मानवता में प्रकट हुआ। अदृश्य महिमा दृश्यमान मानवीय रूप में प्रकट हुई। लोग ज्ञात के माध्यम से अज्ञात को जान सकते थे। स्वर्गीय बातें सांसारिक बातों के माध्यम से प्रकट की गईं। परमेश्वर मनुष्यों के सदृश प्रकट हुए। मसीह की शिक्षाओं में भी ऐसा ही था। अज्ञात को ज्ञात के द्वारा समझाया गया। दैवीय सत्यों को उन सांसारिक बातों के द्वारा जिनसे लोग सबसे अधिक परिचित थे। पवित्र शास्त्र कहता है, यीशु ने ये सब बातें भीड़ से दृष्टांतों में कही, ताकि जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, कि मैं दृष्टांतों में अपना मुँह खोलूंगा। मैं उन बातों को प्रकट करूंगा जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रखी गई हैं। मत्ती 13:35। प्राकृतिक बातें आध्यात्मिक बातों का माध्यम थीं। प्रकृति की बातें और उसके श्रोताओं के जीवन अनुभव लिखित वचन की सच्चाइयों से जुड़े हुए थे। इस प्रकार प्राकृतिक से आध्यात्मिक राज्य की ओर ले जाते हुए मसीह के दृष्टांत सत्य की उस श्रृंखला की कड़ियां हैं जो मनुष्य को परमेश्वर से और पृथ्वी को स्वर्ग से जोड़ती हैं। मसीह की दृष्टांत शिक्षाएं 70।
प्रतिबिंब का आध्यात्मिक सिद्धांत उस दर्पण में देखने से पूरा किया जाता है जो मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। और क्योंकि मेरा दर्शन एक कारणकारी दर्शन है, दर्पण में मसीह की छवि मानवता में मसीह की छवि उत्पन्न करती है। यह दावा करना कि संयुक्त राज्य अमेरिका ही वो है जो दर्शन की स्थापना करता है, यह दावा करना है कि डैनियल की छवि ही वो है जो मसीह की स्थापना करती है। मसीह अपने चरित्र और कार्य के दर्शन की स्थापना करता है और मसीह विरोधी अपने चरित्र और कार्य के दर्शन की स्थापना करता है। दर्शन वही है जो दर्पण में प्रतिबिंब होता है और दर्शन लुटेरों द्वारा स्थापित किया जाता है। किसी पशु की छवि को गलत समझना अर्थात उस छवि को वास्तविक पशु मान लेना समांतर रेखाएं उत्पन्न करता है। अपरिवर्तित व्यक्ति दर्पण में स्वयं को देखता है और यदि वो परमेश्वर की व्यवस्था को देख भी ले तो उसकी मांगों से बचने के प्रयास में वो उस व्यवस्था का तिरस्कार करता है। परिवर्तित व्यक्ति दर्पण में मसीह और उनकी व्यवस्था को देखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका पोप की सत्ता को देखकर और उसकी नकल करके उसका एक प्रतिरूप बनाता है। विरोधी मसीह की नकल संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। लूसिफर ईश्वर के राजनीतिक और धार्मिक सिंहासनों पर विराजमान होना चाहता था।
हे लूसिफर, भोर के पुत्र, तू स्वर्ग से कैसे गिर पड़ा? तू जो राष्ट्रों को निर्बल करता था, पृथ्वी पर कैसे काट डाला गया? क्योंकि तूने अपने मन में कहा था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारों से ऊपर ऊंचा करूंगा, मैं सभा के पर्वत पर उत्तर के पार्श्वों में भी बैठूंगा, मैं बादलों की ऊंचाइयों से ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं परम प्रधान के समान हो जाऊंगा। हीजेकेल 14:12-14।
शैतान मसीह विरोधी है और पोप की सत्ता भी मसीह विरोधी है। पोप की सत्ता कलीसिया में विराजमान थी और उसने यूरोप के राजनीतिक सिंहासनों पर राज किया। दानियेल के 10वें अध्याय का कारणात्मक दर्पण जब उसके आध्यात्मिक अनुप्रयोग में देखा जाता है तो उसे निहारने वालों को मसीह की छवि में रूपांतरित कर देता है। वो सत्य मसीह सदहीन की रेखा को संचालित करता है। जब कोई राष्ट्र या कोई व्यक्ति उस दर्पण सदृश दर्शन में झांकता है तो वो कारणात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है, क्योंकि वो अपनी छवि को उसे निहारने वाले व्यक्ति या राष्ट्र में पुनरुत्पादित करता है, और इससे या तो मसीह की छवि बनती है या पशु की छवि। ये उसी प्रभाव के समानांतर है जिसे दानियेल ने दर्शाया है। दानियेल के लिए दर्शन की स्थापना मसीह ने की, और जब संयुक्त राज्य अमेरिका पशु की छवि बनाता है तो मसीह विरोधी संयुक्त राज्य के लिए उस दर्शन की स्थापना करता है। हम इन विचारों को अगले लेख में जारी रखेंगे।